आरव और आयु को पता चल चुका था कि आरव्या और आर्या के किडनैपिंग के पीछे फैज़ का हाथ था। फैज़ ने उन्हें कॉल करके सब बता दिया था। उसने सामने से ये डिमांड रखी थी कि आरव दोनों बच्चों को ले जाए और बदले में आयु को उसके पास छोड़कर जाए। फैज़ का कॉल कट होते ही आयु लाचारी से आरव की तरफ देख रही थी। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी तभी आरव ने उसे थाम लिया। आरव ने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, काम डाउन मिसेस खुराना, मुझे नज़रों से मत देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उस हैवान के पास में छोड़कर अपने बच्चों को ले आऊंगा मैं? आयु रोते हुए आरव के गले लग गई और बोली, मुझे उससे डर लगता है आरव, मुझे उसके पास नहीं जाना, पर मुझे अपने बच्चे भी वापस चाहिए। प्लीज डू समथिंग, मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। आरव ने आयु को सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, जिंदगी की बाजी लगानी पड़ी तो वो भी लगाकर अपने बच्चों को बचाकर लेकर आऊंगा। आरव की बात सुनकर आयु तुरंत उससे अलग हुई और ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मुझे मेरी पूरी फैमिली अपने साथ चाहिए, मैं कभी जिद नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर प्लीज इस बार हारना मत, मैं अपने बच्चों को खुद संभाल लूंगी, जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, पर प्लीज उन्हें ले आओ। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी और आयु के आंसू पोंछते हुए कहा, इतनी देर में तुमने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली है, देखो आंखें कैसे लाल हो गई हैं, खुद को संभालो, हमें अभी बहुत बड़ी जंग लड़नी है। वो फिर से कॉल करेगा, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, बच्चों के नाम पर डराए का धमकाएगा, लेकिन हमें हिम्मत बनाकर रखनी होगी। वो हमारे बच्चों को कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे तुम चाहिए, वो अच्छे से जानता है, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो वो तुम्हें पाने का आखिरी मौका भी खो देगा, और फैज़ खान जैसा इंसान इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा, हमें उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना होगा। आरव आयु को प्यार से समझा रहा था। आयु ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भारी। आरव फिर पानी लेने के लिए दूसरी तरफ गया। उसने देखा आयु की नज़रें नीचे की तरफ थी। आरव ने धीरे से ड्रॉर खोला और उसमें से अपनी स्लीपिंग पिल्स निकालकर पानी में मिला दी। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने मन में कहा, सॉरी मिसेस खुराना, लेकिन ये ज़रूरी है, तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, उससे लड़ने के लिए मुझे आरव खुराना बनना पड़ेगा, ना कि तुम्हारा पति और अपने बच्चों का बाप। आरव की निगाहें सर्द हो रही थी। आरव आयु के पास आया और उसे पानी पिला दिया। वो आयु के पास बैठा उसे सहला रहा था। कुछ ही देर में आयु को नींद आ गई थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दिया था। आरव वार्डरोब एरिया में जाकर आयु के लिए नाइट ड्रेस लेकर आया और उसे अपने कंधे के सहारे टिकाकर उसकी ड्रेस चेंज करने लगा। आयु की ड्रेस चेंज करने के बाद आरव ने उसे वापस बेड पर लेटा दिया। जाने से पहले आरव ने आयु का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम होने लगी। वो किसी के सामने रो नहीं सकता था, लेकिन इस तरह आयु की नींद में होने की वजह से आरव से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसने आयु की तरफ देखकर सिसकते हुए कहा, क्यों हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें नहीं आ रही हैं कि हम कभी ठीक से एक हो ही नहीं पाए? बच्चे अक्सर कपल्स के बीच में खुशियां लेकर आते हैं। जिस दिन से उनके आने का पता चला है, हमने हमारी जिंदगी में एक पल भी सुकून से नहीं बिताया है। द प्रॉब्लम इज दैट कि ना मैं उन्हें खो सकता हूँ और ना ही तुम्हें। जानता हूँ इस वक्त मैं एक ऐसी चीज़ को दांव पर लगाने जा रहा हूँ जो आगे चलकर तबाही साबित हो सकती है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आरव ने बाहर जाने के बजाय अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर वो क्लोज़ेट एरिया में गया। आरव ने अपने वार्डरोब में से कपड़े साइड में किए और फिर अंदर मौजूद एक और अलमारी को खोला। वो किसी तरह के कमरे का रास्ता था जिसके बारे में अब तक आयु को पता नहीं था। उस कमरे में आते ही आरव ने इधर उधर देखा। कमरे के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी जो आरव ने खुद बनाई थी। उनमें वो पेंटिंग भी थी जब आरव ने आयु को पहली बार देखा था, तब उसने बनाई थी। आरव उस पेंटिंग के पास गया और उस पर हाथ रखकर उसे प्यार से देखने लगा। ये उस दिन की तस्वीर थी जिस दिन आयु छवि की बर्थडे पार्टी में आई थी। उसने नेवी ब्लू कलर का गाउन पहना था और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। मास्क के पीछे से उसकी आंखें आरव को जिस तरह से देख रही थी, आरव ने उसे बिल्कुल साकार रूप दे रखा था। उसे देखकर आरव के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से ही तुम्हारी सूरत इस दिल में बस गई थी। मैं अपने प्यार को खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे खुद को भी दांव पर क्यों न लगाना पड़े। जो आरव खुराना किसी की एक गलती को भी माफ़ नहीं करता, उसने तुम्हारी हजारों नादानियों को माफ़ किया है मिसेस खुराना, तो मेरा प्यार किस हद तक है इसका तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं, आरव ने सर्द लहजे में कहा, और फिर वो वहां से दूसरी तरफ गया। उसने वहां एक सेफ खोली, उसके अंदर एक चिप रखी हुई थी। वो वही मास्टर चिप थी जो अगर बाहर आती तो तहलका मचा सकती थी। उसमें अंडरवर्ल्ड से लेकर दूसरे देशों के माफिया, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े अधिकारियों के लाश छिपे थे। आरव ने एक नज़र उसे देखा और फिर नाहर लूथरा को कॉल किया। इस वक्त वही उनकी हेल्प कर सकते थे। नाहर लूथरा इस वक्त माहिरा के साथ थे। आरव का कॉल आते देख माहिरा सब समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने मिस्टर लूथरा को नहीं रोका। कॉल रिसीव करने से पहले मिस्टर लूथरा ने माहिरा की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे एक्स का कॉल आ रहा है बेबी, क्या करना चाहिए, अटेंड करूँ या नहीं? कर लीजिए डैड, एंड वन मोर थिंग, उसे मेरा एक्स मत कहिए, वो मेरा प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है। हाँ, कुछ टाइम के लिए बहक गया है, पर आना तो उसे मेरी बाहों में ही है, माहिरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए नाहर लूथरा के सामने आकर बैठ गई।
मिस्टर लूथरा ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से कॉल रिसीव किया। उन्होंने जानबूझकर फोन स्पीकर पर डाल दिया था। वो कुछ कहता उससे पहले सामने से आरव की कोल्ड वॉइस सुनाई दी। मास्टर चिप चाहिए थी ना आपको मिस्टर लूथरा, मिल जाएगी, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मास्टर चिप का नाम आते ही मिस्टर लूथरा और माहिरा दोनों हैरानी से खड़े हो गए। माहिरा ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आरव अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड दांव पर लगाने को तैयार हो गया। माहिरा बोलने को हुई तभी मिस्टर लूथरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो आरव से बोले, बहुत जल्दी में लग रहे हो, ना हेलो ना हाय, हालचाल तक नहीं पूछा। तुम तो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि वो चिप तुम्हारे पास है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम सामने से आकर ये ऑफर रख रहे हो? फिर से कोई बड़ा कांड किया है क्या जो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई आरव खुराना? हाँ, तभी आपको कॉल किया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में आपको सब कुछ बता सकूं। फैज खान ने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है और वो बच्चों के बदले मेरी वाइफ को डिमांड कर रहा है। मुझे उस पर सीधा हमला बोलना है और आई वांट योर आर्मी। आरव ने सीधे सीधे उन्हें सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद नाहर लूथरा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो इतनी आसानी से आरव को हाँ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एजाज खान भी कोई छोटा मोटा माफिया नहीं था। इस तरह उस पर धावा बोलना डायरेक्ट एक बड़ी गैंग वॉर करना था।
आरव को किसी भी हाल में अपने बच्चों को फैज से छुड़ाने थे। बच्चों को छोड़ने के लिए फैज ने आयू की डिमांड की थी और आरव किसी भी हाल में उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए आरव की मदद एक ही शख्स कर सकता था और वो था नाहर लूथरा। नाहर लूथरा इतनी आसानी से उसकी बात नहीं सुनने वाले थे, इसीलिए आरव ने सबसे बड़ा दांव लगाया था और वो था मास्टर चिप को उन्हें देना। आरव ने कॉल करके उन्हें पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। आरव फैज पर हमला बोलना चाहता था और मिस्टर लूथरा ने अब तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। नाहर लूथरा के कोई जवाब नहीं देने पर आरव ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो आपको दे सकूं। आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर आपकी हाँ है तो मेरे बच्चे मुझे मिलते ही मैं आपको वो मास्टर चिप दे दूंगा, अगर ना है तो मैं उसे वायरल कर दूंगा। याद रखिएगा, उसमें आपके भी सीक्रेट हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मिस्टर लूथरा नाराज होते हुए बोले। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आता है तो उसे जवाब देने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो सौदा मैं आपके साथ कर रहा हूँ वही सौदा मुझे फैज के साथ करना होगा। मुझे नहीं लगता कि उस चिप से ज़्यादा उसे मेरी वाइफ प्यारी होगी, आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया। इस सिचुएशन में वो खुद को रिलैक्स रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी था। मिस्टर लूथरा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर माहिरा की तरफ देखा। माहिरा भी उलझन में आ गई थी। आरव उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन मास्टर चिप माफिया में किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। मिस्टर लूथरा ने जवाब में कहा, लिसन आरव, तुम जो कह रहे हो वो बात भी सही है। उस मास्टर चिप का किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं इस तरह डायरेक्ट उस पर हमला नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। अगर मैंने ये किया तो एक बड़ा माफिया गैंग वॉर शुरू हो जाएगी और उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। नहीं मिस्टर लूथरा, गैंग वॉर संभालना आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास वो चिप होगी। जो आपके खिलाफ जाने की कोशिश करे आप उस चिप के जरिए ब्लैकमेल कर सकते हैं, आरव ने सुझाव दिया। मिस्टर लूथरा अभी भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो आगे बोले, तो तुम चाहते हो कि मैं सीधे दुश्मनी ना लेकर इनडायरेक्ट तरीके से सबको अपना दुश्मन बना लूं? सामने से वो वार नहीं करेंगे, लेकिन माफिया में कोई उसूल नहीं होता है, वो मेरे पीछे से वार करेंगे। मिस्टर लूथरा इस तरह की किसी भी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं थे। वो सोच विचार में लगे थे तभी माहिरा ने उनकी तरफ थम्सअप का इशारा किया। वो भले ही फैज का साथ दे रही हो, लेकिन चिप के लिए उसने मिस्टर लूथरा का साथ देने का निश्चय किया। माहिरा के हाँ कहते ही मिस्टर लूथरा तुरंत बोले, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की चीटिंग नहीं चाहिए। बच्चे तुम्हारे पास आते ही तुम मुझे वो चिप दोगे, आई प्रॉमिस मिस्टर लूथरा। और आप अच्छे से जानते हो मैं कभी अपनी जबान से नहीं मुकरता। मैं दुबई पहुंच रहा हूं, आप हमले के लिए तैयार रहना। हमला कैसे करना है इसमें हमारी मदद छवि सिंघानिया करेगी, आरव ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। मिस्टर लूथरा से बात करने के बाद आरव ने वो चिप वापस लेने के बाद आरव ने अपना लैपटॉप निकाला। उसने जल्दी से उसका डेटा एक दूसरे चिप में ट्रांसफर किया और उसे कॉपी करके दोनों चिप को सुरक्षित उसी शेफ में वापस रख दिया। सब कुछ करने के बाद आरव वापस आ गया था। अब उसे छवि से बात करनी थी। जब से उसकी तबीयत खराब हुई थी तब उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन फैज के विला में कौन सा रास्ता किस तरह जाता था वो छवि काफी अच्छे से जानती थी। आरव नीचे गया तब गौरवी जी और छवि साथ में ही थी। वो आरव के ही आने का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही गौरवी जी ने तुरंत पूछा, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पता चला बच्चों को किसने किडनैप किया है? आरव ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, है एक साइकोपैथ जो आयू के पीछे पागल है। बच्चों को छोड़ने के बदले में उसे आयू चाहिए जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। दादी आप रिलैक्स कीजिए, उससे निपटने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। फिलहाल मुझे मॉम की जरूरत है, आरव ने इतना ही कहा और छवि का हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में लेकर गया। दूसरे कमरे में आते ही छवि ने हैरानी से कहा,
तो क्या फैज खान ने आरव्या और आर्या को किडनैप किया है? हाँ, उसके अलावा ऐसी घटिया हरकत करके ऐसी डिमांड और कौन रख सकता है, आरव ने जवाब दिया। फिर वो छवि की तरफ देखकर धीरे से बोला, मॉम आई नीड योर हेल्प। मैंने नाहर लूथरा के साथ मिलकर फैज पर हमला करने की प्लानिंग की है। इससे पहले हमें उसके घर की मैपिंग समझनी होगी। उसके अड्डों को भी आप अच्छे से जानती हैं। आपको हमें सब बताना होगा। मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन नाहर लूथरा इसके लिए तैयार कैसे हो गया? इससे तो एक बहुत बड़ा गैंग वॉर छिड़ जाएगा, छवि ने हैरानी से पूछा। वो भले ही अब माफिया की दुनिया छोड़ चुकी हो, लेकिन उसे भी पता था कि कौन से काम का क्या नतीजा हो सकता था। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मिस्टर लूथरा मेरे साथ हैं, तो टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अब आप मुझे सब कुछ बताइए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे दुबई के लिए निकलना है, आरव ने जवाब दिया। छवि ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे सब कुछ एक पेपर पर ड्रॉ करके बताने लगी। लगभग एक घंटे में उसने आरव को पूरा नक्शा बनाकर दे दिया था। उसे लेने के बाद आरव छवि की तरफ देखकर धीरे से बोला, थैंक्स मॉम मेरी हेल्प करने के लिए। मैं जब तक ना आ जाऊं, दादी और आयु का ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आरव ने छवि को हक किया और फिर वहां से चला गया। छवि को आरव की फिक्र हो रही थी। अब वो माफिया से भी जुड़ी हुई नहीं थी जो उनसे हेल्प ले सके। वहीं आरव कबीर को लेकर दुबई जाने के लिए चुका था। उसके आने तक मिस्टर लूथरा और माहिरा हमले की पूरी तैयारी करके बैठे थे। उन्हें इंतजार था तो बस आरव के आने का। दूसरी तरफ फैज साहिबा के साथ मिलकर दोनों बच्चों की बेबी सिटिंग में लगा हुआ था। साहिबा बच्चों को संभाल रही थी। फैज उनकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, आपकी मॉम बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन आपके डैड इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, उनके वेलकम की तैयारी तो करनी ही होगी। फैज वहां से खड़ा हुआ और अपने विला की सिक्योरिटी टाइट करवा दी। वो इस बात से अनजान था कि उसके विला को मिस्टर लूथरा की आर्मी घेर चुकी है। बस उन्हें आरव के आने का इंतजार था ताकि वो किसी भी पल उस पर हमला बोल सके।